नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। खेल जगत के तमाम खबरों को समेट कर लाए हैं, 15 मिनट पे उन पे चर्चा करेंगे और उसकी जानकारी तो देंगे ही। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन। सचिन नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
धन्यवाद लवली।
तो सचिन, आज भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। एक ऐसी जिम्नास्ट जिसने इस क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ी कुछ कर सकते हैं वो पहचान
जी है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अभी तक हमको जितने भी खिलाड़ी मिले हैं और सभी खेलों में, उसमें जिम्नास्टिक में वो हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे क्रिकेट में हमारे लिए सचिन तेंदुलकर हैं। तो निश्चित तौर पर उनका योगदान काफी बड़ा है और रियो में जिस तरह से वो चूकी थी पदक से, चौथे स्थान पे रही और वो पदक से चूक गई, तो उससे लगा था कि मतलब भारतीयों को कि एक पदक ऐसे खेल में आ सकता था जिसमें हमारा कहीं कोई भी नाम लेवा नहीं है और उससे मुझे लगता है कि इस खेल को भी बहुत फायदा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और आज तो उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी।
तमाम खेल खबरों पर चर्चा करेंगे, पहले सुर्खियां। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से जारी। भारत ने पहले 2020 क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को हराया 7 विकेट से। और जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण 3 रजत 8 कांस्य सहित कुल 24 पदकों के साथ रहा शीर्ष पर। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया। दीपा कर्माकर की क्या उपलब्धियां रही उनकी जानकारी लेते हैं शशांक से।
২০১৪ ग्लास्को राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतकर खेलों के इतिहास में ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी। दीपा ने 2015 एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। 2016 में रियो ओलंपिक में वो चौथे स्थान पर रही। दीपा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट थी। वो रियो ओलंपिक के बाद दीपा कर्माकर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिनमें उनका चोटिल होना और सर्जरी कराना शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने तुर्की में 2018 के आर्टिस्टिक विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2021 ताशकंद में एशियाई आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कर्माकर ने स्वर्ण पदक जीता। खेलों में उनके विशिष्ट योगदान के लिए 2015 में अर्जुन पुरस्कार, 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार और 2017 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
जिम्नास्ट में उनके बाद कोई एक ऐसी खिलाड़ी आई नहीं जिसको हम
जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बाकी खेलों में तो अमूमन ये देखने को आता है कि वो खिलाड़ी कोई अगर कोई बड़ा खिलाड़ी निकल के आता है तो एक परंपरा सी बन जाती है, फिर पीछे एक कतार हमारे पास हम कह सकते हैं कि दूसरी पंक्ति के खिलाड़ी हमारे पास आने लगते हैं, जैसे बॉक्सिंग में देखने को मिला या शतरंज में सबसे बड़ा उदाहरण है और खेलों में भी बाकी खेलों में भी इसी तरीके का कुछ रहता है। बैडमिंटन है सबसे बड़ा उदाहरण। तो लेकिन ये मुझे लगता है कि कुछ ऐसा खेल है क्योंकि इसमें थोड़ी तकनीक की भी ज्यादा जरूरत है, फिर ये शायद सब जगह संभव भी नहीं है इसको खेला जाना
जी।
तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि इसमें कोई खिलाड़ी अभी तक हमें उस
लेवल
का नहीं दिखाई दिया जिस लेवल की खुद दीपा कर्माकर थी और अभी वो मात्र 31 साल की थी। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी जिम्नास्ट का जो कैरियर है वो छोटा ही होता है और अगर वो इतने साल तक वो टिकी रही
25 साल तक
जी कुछ दिक्कतों के साथ, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। फिर एक उनके बारे में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो फ्लैट फुटेड थी और उनके बारे में बहुत कम उम्र में ही, जब वो बहुत छोटी थी और खेलों में आना चाह रही थी तभी उनके बारे में ये कह दिया गया था कि वो शायद जिम्नास्टिक नहीं कर सकेंगी।
लेकिन देखिए उसी खेल में
आई और उसी में उन्होंने जो है इतना मतलब नाम कमाया और अपनी तरफ और जो भारत के लिए जो भी जितना भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वो कर सकती थी अपने संभव वो उन्होंने करके दिखाया।
तो विलक्षण प्रतिभा
बिल्कुल विलक्षण
पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी, बहुत सारे उन्होंने इतिहास रचे और जिम्नास्ट में उनको हमेशा हम याद करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की। शारजा में बात करते हैं महिला 2020 क्रिकेट मैच की, जहां इंग्लैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शायद 18 ओवर हो चुके हैं सचिन और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 102 रन।
हाँ, लेकिन अभी तो लग नहीं रहा है कि बहुत कोई बड़ा कोई टोटल दे सकती है दक्षिण अफ्रीका। हालांकि मुझे शुरुआत में लग रहा था कि दोनों लगभग बराबर की टीमें हैं, ये भी एक अच्छी
दोनों
टीम
मैचे जीत के
जी बिल्कुल, और ये दोनों टीमें ही जीत के आई हैं, तो एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए। लेकिन 18वें ओवर तक जो रन संख्या है वो कोई बहुत बड़े टोटल की तरफ
जी,
तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके रन जो है वो बोर्ड पे कम पड़ जाए कि इंग्लैंड के सामने, क्योंकि वहां पे भी कुछ अच्छी बड़ी खिलाड़ी हैं और खासतौर से कप्तान हैं जो हीथर नाइट हैं, वो खुद अच्छी खिलाड़ी हैं। तो ये एक देखने वाली बात है और कि उस मैच का वो मतलब कह सकते हैं कि वो उस ऊंचाई को नहीं गया जिसकी खेल
उम्मीद की जा रही थी कि एक चैलेंजेबल टारगेट
जी बिल्कुल बिल्कुल।
अभी 4 खिलाड़ी जैसे हमने बताया आउट हुए, 103 रन है, तो देखते हैं कितना टारगेट जाता है। टूर्नामेंट में कल शाम 7:30 बजे ऑस्ट्रेलिया के सामने होगा न्यूजीलैंड की टीम। आकर्षिता की रिपोर्ट सुनते हैं।
टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों ने जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मुकाबले में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। कप्तान हेलिसा हील को पुराने फॉर्म में वापस आना होगा। डार्सी ब्राउन को अंतिम एकादश से बाहर किया जा सकता है। वहीं न्यूजीलैंड महिला टीम ने पिछले मुकाबले में भारत को 58 रन से पराजित किया था। न्यूजीलैंड की टीम पावर प्ले का इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानती है, उसके गेंदबाज भी अच्छे फॉर्म में हैं। अंतिम एकादश में टीम में कोई परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, यहाँ स्पिनरों को भी मदद मिलती है। इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 135 रन है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अभी तक 19 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 13 में जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड महिला टीम ने 6 मैच अपने नाम किए हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड महिला टीम के बीच पहला T20 मुकाबला 10 अगस्त 2007 को खेला गया था, जबकि अंतिम बार इन दोनों टीमों के बीच 25 फरवरी 2024 को मैच खेला गया था। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो दोनों मजबूत टीमें देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे पुरुष टीम में होता है कि एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने की हम उम्मीद कर सकते हैं।
निश्चित तौर पे, और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है लवली, क्योंकि हम इसी सेम ग्रुप में ही हैं और हमने सिर्फ अभी एक जीत दर्ज की
हम
है।
हम हार चुके हैं न्यूजीलैंड से
जी, न्यूजीलैंड से हार चुके हैं, लेकिन हमें अभी ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। तो हमारी एक मतलब
नजर रहेगी
कि ऑस्ट्रेलिया कैसा करती है। अगर ऑस्ट्रेलिया, अगर देखिए न्यूजीलैंड अभी रन रेट का भी इसमें बहुत खेल रहेगा, क्योंकि हम अभी 4 टीमें जो है वो 2-2 पॉइंट के साथ लगभग समान स्थिति में है, लेकिन रन रेट में हम सबसे नीचे हैं, 4th स्थान पे हैं। हमसे नीचे सिर्फ श्रीलंका है जो अपने मैच हार चुका है 2 मैच। तो उस हिसाब से देखें तो रन रेट को अगर हमें बेटर करना है तो एक तो हमें अच्छे तरीके से मैच जीतने होंगे, कन्विंसिंग विन चाहिए, और दूसरा ये हमें चाहिए कि दूसरी टीमों के भी ऐसे ही मैच हों कि अगर मान लीजिए न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को हराए तो इस तरीके से बुरी तरीके से धो दे कि उसका रन रेट गिर जाए।
तो हमारी उम्मीदें
हमारी क्योंकि हर जो 5-5 टीमों के ग्रुप है, सिर्फ 2-2 टीमों को ही आगे जाना है, तो सिर्फ 2 टीमों को जाने की वजह से बड़ा मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है लवली। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि कल के जो इनका मुकाबला होगा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का, उसमें किस करवट बैठेगा आउट, जिससे कि हमारे लिए कुछ आसानी हो।
हमारी निगाहें ज्यादा रहेंगी,
बिल्कुल रहेंगी, हमारे लिए इसलिए रहेंगी कि न्यूजीलैंड से तो चलिए हमारा मैच होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी हमें खेलना, हमें एक मैच ऑस्ट्रेलिया से और एक श्रीलंका से खेलना है। तो वो चीजें जो है इसमें सामने आएंगी कि किस तरीके से इनको अपनी रणनीति बनाने में भी आसानी होगी, फिर उस परिणाम का भी असर पड़ेगा
जी। पुरुष टीम की बात करें, कल भारत और बांग्लादेश ग्वालियर में आमने सामने थे। पहला मैच था 2020 श्रृंखला का, जब भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। 128 रन का लक्ष्य मिला था, 11 ओवर 5 गेंद में हमने हासिल कर लिया। हार्दिक पांड्या 16 गेंद में नाबाद, 29 रन की विजयी पारी खेली। संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव ने 29 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से मुस्तफिजुर रहमान, मेहदी हसन मिराज ने 1-1 विकेट लिया। एक अच्छा मुकाबला ये भी, और 128 रन, और सबसे बात बहुत साल बाद ग्वालियर में हो रहा था,
14 साल बाद ग्वालियर में मैच हुआ। और देखिए कि ये एकदम यंग टीम थी, जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता था उस टीम के कुछ ही खिलाड़ी जी बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद हम सब जानते हैं कि हमारे जो सबसे बड़े कुछ खिलाड़ी थे उन लोगों ने तो संन्यास की घोषणा कर दी, T20 नहीं खेलेंगे। तो एक तरीके से एकदम नई टीम थी, 2 खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला, उन दोनों ने प्रभावित भी किया
जी।
तो खासतौर से
मयंक अच्छा है 2020 में नए खिलाड़ी आएंगे।
हाँ, वही है ना कि आईपीएल में वो अच्छा कर रहे थे, उसके बाद उनको यहाँ मौका मिल रहा, उन्होंने यहाँ पे भी अपनी छाप छोड़ी। अभी दो मैच और बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि जो अगला दिल्ली में मैच होगा उसमें भी वो खिलाड़ी
अक्टूबर को होगा
जी, बिल्कुल परसों होगा।
अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती भी आपको अच्छे, क्योंकि बहुत अच्छे
वरुण बहुत दिनों बाद इंटरनेशनल खेल रहे थे, लेकिन वरुण ने
कितना अच्छा किया,
बिल्कुल अच्छा किया। और अर्शदीप तो लगातार, आप सोचिए कि विकेट लेने की जो 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 सफल गेंदबाज हैं उसमें वो नंबर दो पे अभी चल रहे हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है अर्शदीप के साथ कि वो लगातार अपने प्रभावी
प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं।
बिल्कुल।
पेरू के लीमा में जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप का अंतिम दिन था। दीपक दलाल, कमलजीत और राजचंद्र की तिकड़ी ने पुरुषों की 50 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और क्या कुछ हुआ जानते हैं शक्ति से।
इस चैंपियनशिप में सटीक निशाना लगाते हुए शानदार प्रदर्शन किया। 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। दीपक दलाल, कमलजीत और राजचंद्र की टिकड़ी ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में 1600 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इटली 5 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नॉर्वे 4 स्वर्ण और कुल 10 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मुकेश नीलावल्ली का इस टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन रहा। आज उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जो प्रतियोगिता में उनका छठा पदक था। उन्होंने 60 शॉट में कुल 548 अंक बनाए। महिलाओं की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में परीक्षा गुप्ता ने 540 अंक के साथ व्यक्तिगत रजत पदक अपने नाम किया। हालांकि वह हंगरी की मिरियम जैको के 546 अंक के जूनियर विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गई। टूर्नामेंट के अंतिम दिन शार्दुल विहान और सबीरा हैरिस ने मिक्स्ड टीम में ट्रैम्प प्रतियोगिता में भारत को कांस्य पदक दिलाया। दोनों ने 75 से अधिक निशाने लगाए। ISSF का सफर के इस सत्र के अंतिम पड़ाव के लिए नई दिल्ली पहुंच गया है, जहां 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विश्व कप करनी सिंह शूटिंग रेंज में राइफल, पिस्टल और शॉटगन के फाइनल मुकाबले होंगे। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
इसमें चर्चा करेंगे शूटिंग पे, लेकिन पहले कुछ खबरें संक्षिप्त में जो आज हुआ वो जानते हैं विशाल से।
श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जयसूर्या 31 मार्च 2026 तक इस पद पर रहेंगे। श्रीलंका क्रिकेट के बयान के अनुसार, श्रीलंका क्रिकेट की कार्यकारी समिति ने यह निर्णय हाल के भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दौरे पर टीम के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए लिया। मुख्य कोच के रूप में जयसूर्या की पहली जिम्मेदारी वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले सीमित ओवरों के मैच होंगे, जो दाम्बुला और पल्लेकेले में खेले जाएंगे। बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने ओंग सोंगे सिंगापुर ओपन जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने जाडेन ओंग को 5-1 से हराया। पहले दो फ्रेम पर आडवाणी का दबदबा रहा, जबकि तीसरे में ओंग ने जीत दर्ज की। चौथे फ्रेम में आडवाणी ने फिर से खेल को अपने कब्जे में कर लिया। फाइनल फ्रेम में आडवाणी ने 74-6 से प्रतिस्पर्धा में प्रभावशाली जीत के साथ खेल संपन्न किया। आडवाणी अब विश्व बिलियर्ड्स खिताब के लिए नवंबर महीने में दोहा में स्पर्धा करेंगे। एशियाई खेलों के पदक विजेता लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह को 20 अक्टूबर को हांगकांग में होने वाली एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के लिए आज 8 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल किया गया। गुलवीर ने पिछले साल हांगझोऊ एशियाई खेलों में 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
तो ये कुछ खबरें जानी हमने संक्षिप्त में। हम निशानेबाजी की बात कर रहे थे सचिन, हमारे निशानेबाज खास तौर से वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये जूनियर खिलाड़ी कर रहे हैं तो एक सुनहरा भविष्य नजर आता है।
निश्चित तौर पे देखिए, खिलाड़ी तो हमें यहीं से मिलेंगे लवलीन, क्योंकि आप ये देखिए कि ओलंपिक में ठीक है इस बार तो खैर फिर भी हमारा काफी अच्छा मेडल काउंट रहा निशानेबाजों की वजह से
जी,
तो इसमें कोई शक नहीं है कि आगे भी हमें इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे अगर इसी तरीके की खिलाड़ी हमारे पास आते रहेंगे। आप ये देखिए कि इटली दूसरे नंबर पे रहा, जबकि इटली को तो एक बड़ी निशानेबाजी में ताकत माना जाता है तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा कर रहे हैं हम लोग। और बस वही है जो आप कह रही हैं कि अगर हम ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में इनको पदकों में बदल सकें इस प्रदर्शन को, तो वो ज्यादा बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे तो जरूर। इस बार सबसे बड़ा निशाने दल भी था पेरिस जो गया, तो वो सबसे बड़ा दल हमारा गया था,
और नए खिलाड़ियों ने वहां भी बहुत अच्छा प्रदर्शन।
बिल्कुल, आप ही देखिए कौन उम्मीद कर रहा था कि वो जो है 22 साल की लड़की दो मेडल लेके आएगी, फिर वो स्वप्निल कुसाले का मेडल आया, फिर डबल्स में सौरभजीत था, तो इस तरीके से काफी अच्छे।
समय नहीं है सचिन इस चर्चा को आगे बढ़ाए, हमारे हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद लवली।
और लिसनर्स, हम कल फिर मिलेंगे, फिलहाल शुभरात्रि।